हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा को कभी भी किसी भी आर्टिफिशियल मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि तारा की सादगी तारा को अपने आप में ही उसे सबसे ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाता था। वो अमन कितनी ही देर तक तारा को देखते रहा था और तारा अपने आप में ही शर्माए जा रही थी। सर सब कुछ भूल चुके थे। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ वो सोचने लगी थी कि काश उसकी ये ज़िंदगी के ये पल कभी भी ख़त्म ना हो और कभी भी उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पल ना हो जिस पल उसे अमन को छोड़कर जाना पड़े। तारा की हालत काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जल्दी ही अमन भी एकदम से परफेक्ट पिंक लाइट पिंक सूट पर तैयार होकर दोनों एक बार फिट फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। जैसे ही दोनों एक साथ नीचे आए तब करिश्मा जी खुद को रोक नहीं पाईं और दोनों की बालियां लेने लगी थीं और कहने लगी थीं, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए। वाकई मेरी बहू कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। आखिरकार खूबसूरत हो भी क्यों ना, है तो मेरी बहू बिल्कुल परी ही जैसे। अचानक से करिश्मा जी की ज़ुबान फिसली। अब तारा की सांस अटक गई थी और वो आंखें निकालकर करिश्मा जी की ओर देखने लगी थीं। वहीं करिश्मा जी को भी जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, जबकि अमन अपनी माँ की ओर देखते हुए कहने लगा था, मॉम अब तारा को परी कह रही है, आपका दिमाग तो ठीक है ना, तारा कोई परी नहीं है, वो वही इंसान है, आप क्या कह रही हैं। तभी करिश्मा जी ने तुरंत अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, तारे बेटा इंसान है तो क्या हुआ, लेकिन दिखती तो एकदम परी जैसी है ना, देखना कितनी खूबसूरत है तेरी बीवी। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा था, अमन खिलखिलाकर हंस पड़ा था और कहने लगा, माँ ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा प्यारी है। ऐसा कहकर अमन ने करिश्मा जी के सामने तारा के माथे को चूम लिया था और तारा इस हरकत के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और वो एकदम से शर्मा उठी थी और उसके गाल ज़रूरत से ज़्यादा लाल हो गए थे। तब करिश्मा तारा के ऐसे हालात देखकर जोरों से हंस पड़ी थी और कहने लगी थी, अरे मेरी प्यारी बेटी तुझे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तभी अमन ने करिश्मा जी की ओर देखते हुए कहा था, अच्छा मॉम आपने बुलाया था, कुछ काम था क्या। तभी करिश्मा जी को तुरंत अमित का ख्याल आ गया था, उनका दिल कड़वाहट से भर गया था और कहने लगी थी, क्या तुझे पता नहीं ये किस काम के लिए तुझे यहाँ बुलाया है, तू जानता है ना कि आज तेरा दोस्त आने वाला है जो कि तेरा दोस्त नहीं बल्कि तेरा सौतेला भाई है। जैसे ही करिश्मा जी ने अमन को अमित की याद दिलाई, अचानक से अमन को भी काफ़ी अजीब सा लगा था और वो कहने लगा था, और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा और फिलहाल मैंने अमित को कल ही फ़ोन कर दिया था, वो आज यहाँ आ रहा है, उसके यहाँ आने के बाद यहाँ बाकी की सारी बातें करेंगे। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा था, क्योंकि जब से उसे अमन का फ़ोन आया था तब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो उठा था और मलिका बार बार अमित से पूछे जा रही थी, आखिरकार हुआ क्या है मालिक, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है कि अमन सर को कोई ना कोई काम हो। तभी अमित गुस्से से मलिका की ओर देखते हुए बोला था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसे कुछ काम ही होगा, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी भी अपने घर पर इस तरह से नहीं बुलाया है और भले ही मैं उसका बचपन से दोस्त हूँ लेकिन उसके घर में मुश्किल से 2 या 3 बार ही गया हूँ, क्योंकि अमन एक जिन है, इस वजह से वो अपने किसी भी इंसानी दोस्त को अपने घर पर नहीं बुलाया करता था, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था और मैं भी जानकर भी अनजान बना रहता था, लेकिन आज सामने से उसने फ़ोन करके मुझे अपने घर बुलाया है तो कुछ तो बड़ी बात ज़रूर है। इसके बारे में तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, आखिरकार अमन ने मुझे क्यों बुलाया है। तभी मालिका का अमित की ओर देखते हुए कहने लगी थी, वो मालिका एक और बात मुझे आपको बतानी थी। तब अमित सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखने लगा था और कहने लगा था, हाँ हाँ बोलो क्या बात बताना चाहती हो तुम। तभी मालिका ने कहना शुरू कर दिया था, वो मालिक आपने बोला था ना कि किसी लड़की का इंतज़ाम कर देना शादी के लिए, तो एक लड़की का इंतज़ाम हो गया है, मैंने उसे सारी चीज़ समझा दी थी, इतना ही नहीं मैंने उसे अपने जादू के वश में भी कर लिया है, तो जैसा हम कहेंगे वो वैसे ही करेगी, और कमाल की बात तो ये है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और साथ साथ ज़रूरतमंद भी है, क्योंकि उसका एक केवल बूढ़ा बाप था जिसका कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका है, तो वो लड़की हमारे काम ज़रूर आएगी। जैसे ही मलिका ने ये कहा, अमित बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसने आगे बढ़कर मलिका के होठों को चूम लिया था और कहने लगा था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम ये मेरा काम ज़रूर कर पाओगे, और रही बात अमन के बुलावे की तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार अमन मुझे कहना क्या चाहता है, तुम अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी क्यों ना पहले मेरा मूड तुम ठीक कर दो, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा इस बात को लेकर परेशान हो चुका है। पर हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है अगर तुम चाहोगे तो मेरा मूड पूरी तरह से ठीक कर दोगे। ऐसा कहकर आंखों ही आंखों में मलिका को कुछ जताने लगा था, और मलिका उसके बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी और अंदर ही अंदर कूड़ कर रह गई थी, क्योंकि वो काली शक्तियों के मालिक अमित को छूना तक नहीं चाहती थी, और ना ही वो ये चाहती थी कि अमित उसके किसी भी जिस्म को छुए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अमन को अपना बनाना चाहती थी। भले ही उसके अंदर एक बुढ़िया छुपी हुई थी, लेकिन उसका शरीर एकदम जवान और खूबसूरत था। वेल, अब चूंकि अमित का हुक्म था तो उसे अब अमित को हर तरह से खुश करना ही था, इसीलिए वो अमित को लेकर अमित के साथ उसके कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर तारा को कैसे न कैसे कुछ भी करके दादा महाराज के बगीचे में जाना था, तो इसके लिए उसने करिश्मा से बात करने का फैसला कर लिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी करिश्मा जी है जो वहां पर उसका राज अच्छी तरह से जानती है, और अगर वो करिश्मा जी को इस बात के बारे में बताएंगी तो करिश्मा जी उसे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर दे देगी, और अमन को किसी न किसी बहाने से अकेला छोड़ने के लिए कह देगी, क्योंकि अमन था कि तारा को एक पल के लिए भी अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो हर जगह उसे चिपकाए हुए था। कहीं ना कहीं अमन को बार बार ये लग रहा था कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी प्यारी बीवी तारा को अकेला छोड़ा तो तारा उसे छोड़कर फिर कहीं चली जाएगी। जैसे ही तारा ने करिश्मा जी को बगीचे में जाने के लिए बताया, अब करिश्मा जी सोचने लगी थी, कहने लगी थी, लेकिन बेटा मैं अमन से किस तरह से बात करूं? तुम तो अच्छी तरह से जानती है तुम्हारी जुदाई ने अमन को काफी ज्यादा पोजेसिव बना दिया है। वो तुम्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं उसे बार बार ये लग रहा है कि अगर उसने एक पल के लिए भी तुम्हारा हाथ छोड़ा तो तुम मुझसे कहीं फिर दूर ना हो जाओ। तुम तो जानती हो ना वो तुम्हें कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा परी के दिल में कुछ गुदगुदी सी होने लगी थी, और फिर अगले ही पल में खुद को संभालते हुए कहने लगी थी,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मॉम कि आप क्या कहना चाहती है, लेकिन इस वक्त मेरा दादा महाराज से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मेरी बात समझनी ही होगी, और वैसे भी मैं बगीचे जाने के लिए जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के लिए अमन सर को अपने किसी काम में उलझाए रखना होगा। जैसे ही करिश्मा ने तारा ने ये कहा, करिश्मा जी कुछ सोचने लगी थी और कहने लगी थी, चलो ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर करिश्मा जी जल्दी ही बाहर आई थी। लेकिन उससे पहले ही अमन उन्हीं की ओर आ रहा था और तारा की ओर देखकर कहने लगा था, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें हॉल में खड़े रहने के लिए ही कहा था। मैं आ तो रहा था। तभी करिश्मा जी अमन की ओर देखकर कहने लगी थी, बेटा ये क्या कर रहा है? तारा बेटी को आप थोड़ी देर आराम कर लेने दो, तो अच्छी तरह से जानता है कि ये परमेश्वर के कैद में थी और वहां से रिहा होकर आई है। और जब से तेरे साथ साथ है, इसे आराम करने का तो मौका मिला ही नहीं है। और तारा बेटी, मुझे अमन से अभी काफी सारे काम करवाने हैं, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, और हाँ, पूरे दो घंटे तक तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। जैसे ही करिश्मा जी ने ये हुक्म दिया, अमन हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा था। मॉम, ये आप ये क्या कह रही हैं? दो घंटे? दो घंटे मैं तारों को देखे बगैर कैसे रह सकता हूँ? भला? तभी करिश्मा जी ने तुरंत आगे बढ़कर अमन का कान पकड़ लिया था और कहने लगी थी, अच्छा, अपनी माँ के सामने इस तरह की बात करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? हाँ, हम मानते हैं हम लोग जिन हैं, लेकिन इंसानों के बीच रहते हुए इमोशन हमारे अंदर भी आ चुके हैं। और तुम जानती हो कि इंसानों में बड़े बूढ़ों के सामने कभी भी मियां बीवी दूसरे से बात तक नहीं करते थे। और तुम हो के सारा दिन घर में अपनी बीवी का हाथ और पल्लू पकड़े रहते हो। जैसे ही करिश्मा जी ने इस तरह के बातें की, अब अमन हैरानी से अपनी मां की ओर देखने लगा था। क्योंकि उसकी मां ने कभी भी इस तरह की बातें कभी भी नहीं की थी। तभी करिश्मा जी ने तुरंत आगे बढ़कर अमन का कान पकड़ लिया था और कहने लगी थी, अच्छा, अपनी माँ के सामने इस तरह की बात करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? हाँ, हम मानते हैं हम लोग जिन हैं, लेकिन इंसानों के बीच रहते हुए इमोशन हमारे अंदर भी आ चुके हैं। तो हमें उनकी थोड़ी बहुत इज्जत करनी चाहिए। और तुम जानते हो, इंसानों में बड़े बूढ़ों के सामने कभी भी मियां बीवी दूसरे से बात तक नहीं करते थे। और तुम हो के सारा दिन घर में अपनी बीवी का हाथ और पल्लू पकड़े रहते हो। जैसे ही करिश्मा जी ने इस तरह की बातें की, तभी करिश्मा जी ने तुरंत आगे बढ़कर अमन का कान पकड़ लिया था और कहने लगी थी, अच्छा अपनी माँ के सामने इस तरह की बात करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती?
तो हमें उनकी परजू का तू जानता नहीं है, तेरे बाप ने क्या हुक्म दिया है?
तू ये बता, तेरा वो दोस्त आखिर कब तक आ रहा है?
जैसे ही करिश्मा जी के मन में एक बार फिर अमित का ख्याल आया, उसका दिल कड़वाहट से भर गया था। और तब अमन ने करिश्मा जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था, मॉम आप क्यों परेशान होती हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
और रही बात अमित की, तो मैंने ऑलरेडी कल ही अमित को मैसेज कर दिया था और वो अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंचने ही वाला होगा।